एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। समझ न पाए अगर यीशु को, यीशु से नाता न तोड़ दे। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में, यीशु सहारा तेरा। ये संसार अभिलाषा छोड़, यीशु मसीह तक बढ़ते चल। ये संसार अभिलाषा छोड़, यीशु मसीह तक बढ़ते चल। अगर तुम मसीह के संग चले, फूलों की खुशबू साथ फले। अगर तुम मसीह के संग चले, फूलों की खुशबू साथ फले। बिगड़ भी जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा आशीर्वाद मांगते हैं पिता। अभी जब हम तेरे वचनों से सीखने जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हमें अगुवाई कर, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें बहुतायत से आशीष दे, विशेषकर मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ से तेरा वचन को बतला सकूं, और हम सबों को तो आशीष दे पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दयाकर सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन से अध्ययन करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं। आज का शीर्षक है, हम परमेश्वर में भरोसा कर सकते हैं। जिम ने एक बार एक नास्तिक से पूछा कि क्या कभी चाहे कुछ क्षणों के लिए ही उसने इस बात पर विचार किया है कि हो सकता हो कि परमेश्वर का अस्तित्व हो। बिल्कुल, नास्तिक ने जिम को चौंकाने वाला जवाब दिया। वर्षों पहले जब हमारा पहला बच्चा जन्मा, तो मैं परमेश्वर में काफ़ी विश्वास करने वाला बन गया। जब मैंने उस छोटे से लेकिन संपूर्ण इंसान को पालने में देखा, जब मैंने उन नन्ही उंगलियों को हरकतें करते देखा और उन नन्ही आँखों में पहचानने की कोशिश देखी, तो कई महीनों का एक वक्त आया जब मैं नास्तिक नहीं रहा था। उस नन्ही जान को देखकर मैं लगभग पूरा यकीन करने लगा था कि परमेश्वर का अस्तित्व होता है। हर डिजाइन की हुई चीज का कोई डिजाइनर होता है। मानव शरीर के डिजाइन को देखकर किसी डिजाइनर का अस्तित्व होना अवश्य भावी लगता है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि दिमाग हजारों मानसिक चित्रों को भंडारित रखता है और याद रखता है, समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करता है। सौंदर्य को समझता है, खुद को समझता है और प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ का निर्माण करने की इच्छा रखता है। दिमाग से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश हमारे शरीर की तमाम मांसपेशियां गतिविधियों को नियंत्रण करते हैं। कंप्यूटर भी विद्युत आवेगों के माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के आविष्कार और निर्माण के लिए मानव दिमाग की जरूरत पड़ी थी और वही इसे बताता है कि उसे क्या करना है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्रोतकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मानव शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इसका निर्माण अद्भुत रचयिता ने किया है। मैं इसलिए तुम्हारा गुणगान करता हूँ क्योंकि मैं भयपूर्ण और शानदार तरह से निर्मित हूँ। आपके कृत्य उत्कृष्ट हैं, मैं इसे पूरी तरह जानता हूँ। भजन संहिता 139:14। परमेश्वर की कृतियों को देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मानव मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों की जटिल डिजाइन परमेश्वर की कृतियां हैं और एक असीम रूप से कुशल डिजाइनर की ओर इशारा करती हैं। इंसान का बनाया कोई भी बम मानव हृदय का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई कंप्यूटर नेटवर्क हमारे तंत्रिका तंत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई दूरदर्शन प्रणाली इंसान की आवाज, कान और आंख उतनी कार्यकुशल नहीं है। कोई केंद्रीय वातानुकूल और तापक प्रणाली हमारी नाक, फेफड़ों और त्वचा के काम से मुकाबला नहीं कर सकती। मानव शरीर की जटिलता इशारा करती है कि किसी ने इसे डिजाइन किया है और वो किसी परमेश्वर है। मानव शरीर परस्पर संबंधित विशद रूप से रूपांकित अंगों का एक तंत्र है। फेफड़े और दिल, नसें और मांसपेशियां सभी अविश्वसनीय रूप से जटिल कार्यों को करते हैं जो अन्य अविश्वसनीय रूप से जटिल कार्यों पर निर्भर हैं। अगर आपको 10 सिक्कों पर 1 से 10 तक के अंक लिखने को कहा जाए, फिर आप उन्हें अपनी जेब में डालकर जोर से हिला लें और बाहर निकाल कर रख लें, इसके बाद इस बात की क्या संभावना है कि आप इन सिक्कों को एक के बाद जेब में सही क्रम में डाल सके। गणितीय रूप से इस बात की संभावना 1 अरब में 1 है कि आप उन्हें 1 से 10 तक सही क्रम में लगा सकें। अब आप पेट, दिमाग, हृदय, लीवर, धमनियों, नसों, किडनी, कान, आंखों और दांतों के एक साथ विकसित होने और एक लय में काम करना शुरू करने की संभावना पर विचार करें। मानव शरीर के डिजाइन की सबसे तर्कपूर्ण व्याख्या क्या हो सकती है? बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:26-27 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को हमारी छवि में बनाते हैं हमारे जैसा। इस तरह परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार गढ़ा। उन्होंने पुरुष और स्त्री का निर्माण किया। प्रथम पुरुष और स्त्री यूं ही नहीं बन सकते थे। बाइबल पुष्टि करती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि के अनुसार बनाया था। उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारे अस्तित्व का निर्माण किया। हर चीज जो बनती है उसका कोई निर्माता होता है, परंतु परमेश्वर का साक्ष्य केवल हमारे शरीरों के डिजाइन तक सीमित नहीं है। यह आकाश पर फैला है। शरीर की रोशनियों से दूर रात के आसमान पर नजर डालो, तारों से भी आगे वो दुधिया बादल जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, असल में हमारे सूरज जैसे अरबों चमकते तारों की आकाश गंगा है। असल में हमारा सूर्य और इसके ग्रह आकाश गंगा का एक हिस्सा है और हमारी आकाश गंगा अनुमान के अनुसार 100 अरब आकाश गंगाओं में से एक है, जिन्हें हम धरती पर स्थित विशालकाय दूरबीन और हबल दूरबीन से देख सकते हैं। क्योंकि आश्चर्य नहीं कि भजनकार ने निष्कर्ष निकाला कि तारे महान रचयिता के अस्तित्व का प्रमाण है। विशाल आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है। आसमान उसके हाथों की कारीगरी की उद्घोषणा है। भजन संहिता 19:1-3। ब्रह्मांड की अति जटिल रचना और विशाल आकार को देखकर हम क्या तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं? प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1। परमेश्वर सब चीजों से पूर्वकालिक है और उसमें सब चीजें एक साथ जुड़ी हैं। कुलुसियों 1:17। सभी रचनाएं सर्वोत्कृष्ट डिजाइनर और असीम रचयिता परमेश्वर के साक्ष्य हैं। सरल शब्दों में प्रारंभ में परमेश्वर में हमें जीवन के रहस्य का उत्तर मिलता है। परमेश्वर ही हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है। आज कई महान वैज्ञानिक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आर्थर कॉम्प्टन ने धर्म ग्रंथ में लिखे इस छंद पर टिप्पणी करते हुए एक बार कहा था, मेरे लिए आस्तिकता इस अनुभूति के साथ शुरू होती है कि किसी परम बुद्धिमता ने इस ब्राह्मण को रचा और इंसान को बनाया। मेरे लिए यह आस्तिकता या विश्वास मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जहाँ कोई योजना होती है वहाँ कोई दिव्य बुद्धिमता होती है। एक व्यवस्थित प्रकट ब्राह्मण सर्वकालिक सबसे प्रभावशाली कथन की सच्चाई को प्रमाणित करता है। प्रारंभ में परमेश्वर। बाइबल परमेश्वर को साबित करने का प्रयास नहीं करती, यह उसके अस्तित्व की उद्घोषणा करती है। डॉक्टर आर्थर कॉन्क्लिन, एक प्रख्यात जीव वैज्ञानिक, ने एक बार लिखा था, जीवन का आकस्मिक रूप से यूं ही प्रकट हो जाना एक ऐसी संभावना है जैसे कि किसी प्रिंट छापने वाले स्थान पर कोई विस्फोट हो और सही क्रम में जमे हुए शब्दों के साथ एक शब्दकोश प्रकट हो जाए। हम जानते हैं कि मानव कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। हम चीजों का निर्माण कर सकते हैं, चीजों का आविष्कार कर सकते हैं, चीजें क्रम में साथ रख सकते हैं, लेकिन हमने कभी कोई नन्हा सा मेंढक या कोई आसान सा फूल भी एकदम शुरुआत से नहीं बनाया है। हमारा अस्तित्व पुकार पुकार कर कहता है कि परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है, रचा है और इसे बरकरार रखा है। ब्राह्मण इस दुनिया और मनुष्यों की उत्पत्ति का एकमात्र विश्वसनीय उत्तर परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों के साथ निजी संबंध बनाते हैं। जिस परमेश्वर ने तारों से भरा आकाश बनाया है, जिन्होंने यह ब्रह्मांड बनाया है, उनको हमसे निजी संबंध की चाहत होती है। मूसा के साथ परमेश्वर के व्यक्तित्व संबंध थे। परमेश्वर मूसा से बात करते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने दोस्त से करता है, निर्गमन 33:11। और परमेश्वर तुम्हारे साथ गहरे आत्मिक निजी संबंध चाहते हैं और तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं। यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था, तुम मेरे मित्र हो, यूहन्ना 15:14। इंसान प्राकृतिक रूप से धार्मिक प्राणी होते हैं और इसलिए इंसान हमेशा से परमेश्वर की अवधारणा के बारे में सोच विचार करता रहा है। जानवर कभी पूजा स्थल नहीं बनाते, लेकिन जहाँ भी आपको औरतें और आदमी मिलेंगे आप उन्हें पूजा करते पाएंगे। इंसान दिल के गहरे भीतर आराधना करने, परमेश्वर के बोध और परमेश्वर के सान्निध्य की प्रकृति इच्छा मिलती है। जब हम परमेश्वर को पाने की इस गहरी इच्छा को पहचानने लगते हैं, तब फिर हमारे भीतर परमेश्वर के अस्तित्व और हमारी आवश्यकता के बारे में कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता। 1990 के दशक में रूस में लाखों नास्तिकों ने नास्तिकता को त्याग दिया था और परमेश्वर के उन्मुख हो गए थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक कथन कहा था जो पूर्वकालिक सोवियत संघ के अनेकानेक परिवर्तित नास्तिकों की टिप्पणियों का निचोड़ और प्रतीक है। मैंने अपने वैज्ञानिक शोधों में जीवन के अर्थ के बारे में अनुसंधान किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें मुझे भरोसा आ सके। मेरे आसपास के वैज्ञानिकों में भी यही रिक्त भावना है। जब मैं खगोल विज्ञान के अपने अध्ययनों में ब्राह्मण की विशालता और आत्मा की रिक्तता को देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि इसका कुछ अर्थ मौजूद होना चाहिए। फिर जब मुझे आपने बाइबल दी और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो मेरे जीवन की रिक्तता भर गई। मेरी आत्मा की परिपूर्णता के लिए मैं बाइबल को एकमात्र स्रोत पाता हूँ। मैंने यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है और मुझे जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि मिली है। मसीहों को परमेश्वर में इसलिए भरोसा है क्योंकि वे उनसे मिले हैं और उन्हें पता है कि वो हृदय की गहन आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हमारे रचयिता हम में से प्रत्येक के बारे में विचारपूर्ण है। वो हमारे बारे में निजी रुचि रखते हैं, जैसे कि तुम ही उनकी एकमात्र कृति हो। इसलिए हम परमेश्वर में भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने हमारे बारे में जो कुछ भी बनाया है, जिसे जब तक वह हमें नहीं मिल जाते, हम चैन महसूस नहीं करते। और क्योंकि जब हम उन्हें ढूंढते और पाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सभी जरूरतें और गहन इच्छाएं परिपूर्ण कर देते हैं। वह किस प्रकार के परमेश्वर हैं? यह तर्कपूर्ण है कि कोई निजी परमेश्वर स्वयं के बनाए प्राणियों को अपने बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कि कोई पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें जाने। और बाइबल में परमेश्वर हमें बताते हैं कि वो कौन है और वो कैसे हैं। आदमी और औरत बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या पद्धति इस्तेमाल की? तो परमेश्वर ने पुरुष को अपनी छवि के अनुसार रचा, परमेश्वर की छवि में उन्होंने उसे गढ़ा। उत्पत्ति 1:27। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। यह हम यूहन्ना 4:8 में पाते हैं। परमेश्वर मनुष्यों से अपने प्यार भरे हृदय के कारण संबंधित है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने किया है या कभी करेंगे जो निस्वार्थ बलिदानी प्रेम से प्रेरित नहीं हो। तो वह किस प्रकार के परमेश्वर हैं? बाइबल में परमेश्वर बार बार खुद को पिता के रूप में बोलते हैं। क्या हम सबके पिता एक ही नहीं हैं? क्या हमें एक ही परमेश्वर ने नहीं रचा है? यह हमें मलाकी 2:10 बताती है। आज हम जो पिता की कुछ छवियों को देखते हैं, वो कतई वांछनीय नहीं है। आज उपेक्षित करने वाले पिता, अपमानजनक पिता मौजूद हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। वो ध्यान रखते हैं और संवेदनशील पिता हैं। वो ऐसे पिता हैं जो अपने बेटे या बेटी के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस तरह के पिता हैं जो सोते समय अपने बच्चों को अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। हमारे प्रेमपूर्ण पिता मात्र धर्म पुस्तक में लिखे शब्दों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने से कहीं ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। वे जानते थे कि जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, वह हमारे लिए कहीं अधिक वास्तविक होता है, बजाय उसके जिसे हम केवल किसी किताब में सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसलिए वह हमारी दुनिया में वास्तविक व्यक्ति के रूप में आए, यीशु के रूप में आए। यीशु अदृश्य परमेश्वर की छवि हैं, कुलुसियों 1:15 हमें बताता है। इसलिए अगर आपने यीशु को देखा है, तो आपने परमेश्वर को देखा है। वह हमारे स्तर पर आए, वह हमारे जैसा बने, ताकि वह हमें सिखा सके कि कैसे जीना है और खुश रहना है, और हम देख सके कि परमेश्वर वास्तव में कैसे होते हैं। यीशु परमेश्वर का दिखाई देने वाला रूप है। उन्होंने खुद कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता को देखा है। यूहन्ना 14:9 में यह हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने चेलों को कहा था। जब आप 4 गॉस्पल या सुसमाचार के किताबों को पढ़ते हैं, नए नियम की पहली 4 पुस्तकों में यीशु की कहानी को पढ़ते हैं, तो आपको हमारे आकाशीय परमपिता की चित्ताकर्षक छवि दिखाई देती है। असभ्य मछुआरों ने मसीह के पीछे पीछे जाने के लिए अपने जाल छोड़ दिए थे, और छोटे बच्चे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वह सबसे विनाशकारी पापी को सांत्वना दे सकते थे और सबसे स्वघोषित न्यायप्रिय के पाखंड को निरस्त कर सकते थे। उन्होंने अंधत्व से लेकर कोर तक सब कुछ रोग मुक्त किया था। अपने समस्त कृत्यों में यीशु ने प्रदर्शित किया कि परमेश्वर प्रेम है। उन्होंने मानव आवश्यकता को इस तरह पूरा किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था, और उनके बाद भी किसी ने नहीं किया। परमेश्वर कैसे हैं? इसका निर्णायक महिमापूर्ण प्रगटीकरण तब हुआ जब यीशु सूली पर थे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु इसलिए मरे कि ना केवल वे हमें आज अधिक प्रसन्नता भरा जीवन दे सकें बल्कि हमें शाश्वत जीवन भी दे सकें। सदियों से लोग परमेश्वर के बारे में सोचते रहे, आशा करते रहे और स्वप्न देखते रहे। उन्होंने आकाश में और प्रकृति के सौंदर्य में उनकी कारीगरी देखी। फिर सूली पर यीशु ने सदियों का मौन भंग कर दिया और लोगों ने खुद को परमेश्वर के चेहरे की ओर झांकते पाया। उन्हें उस स्वरूप में देखते हुए जो वे हैं, प्रेम, शाश्वत, अविनाशी प्रेम, आप परमेश्वर को अभी पा सकते हैं जैसा यीशु ने खुद को प्रकट किया था। वो प्रगटीकरण या पाना आपको निजी अभिपुष्टि की ओर ले जाएगा और आप कहेंगे, पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को इस वचन सुनने में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं। तू हमारे मन और हृदय को तेरे प्रेम से भर दे। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमें अपना प्रेम दर्शाया। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने स्वरूप में रचा। हम जानते हैं पिता कि तू ही हमारा सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला है। हम तुझे ग्रहण करते हैं, तुझे उपासना करते हैं और तेरे राह में चलना चाहते हैं। मेरे हरेक श्रोताओं के संग और उन्हें बहुत आशीष दे और हम सबों को तेरे नज़दीक ला पिता। हमारे पाप दोष को हमारे जीवन से दूर कर दे और हमें धर्मी बना और तेरे रास्ता में चला और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर दे। हम तेरी उपासना करते हैं और करते रहना चाहते हैं और तेरे रास्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।